إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشيات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الأحزاب کی آیت نمبر 35 آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دے دی اور اگر آپ اپنے قرآن پاک میں دیکھیں تو بالکل ترتیب کے ساتھ ایک صفت کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری ہے. اور اگر آپ کے پاس قرآن پاک اس وقت نہیں بھی ہے تو آپ میرے ساتھ ساتھ سٹیپس لکھتے جائیں, یہی اصل میں ترتیب ہے. بہت سارے لوگ اس ترتیب کو پیچھے کرتے ہیں. تو ہم آج اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کے بعد دیکھیں گے کہ ایک ایمان والے کی حقیقی تصویر کیا ہوتی ہے. اور جب ایک تصویر مکمل ہوگی نا تو پھر اس کے بعد رمضان آئے یا نہ آئے وہ ویسا ہی ہوگا. اور خاص طور پہ پھر اس میں ہم رمضان کے تقاضوں پہ تھوڑی بات کرتے رہیں گے بیچ میں کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. میں ہلکا سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی ہلکی پھلکی وضاحت کے ساتھ, اور اس کو تفسیری ترجمہ بھی کہتے ہیں, مختصر وضاحت کہہ لیجئے. لیکن اس وقت ہم تفسیر کی کلاس میں نہیں ہیں, ہم صرف غور و فکر کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک ہم قرآن پاک کی آیت کو اپنے سامنے نہیں رکھتے تو بات اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین, بے شک مسلمان مرد, والمسلمات اور مسلمان عورتیں, والمومنین والمومنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, یعنی کپلز کی بات ہے اصل میں, والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مستقل مزاجی سے, اور مستقل مزاجی سے فرما برداری کرنے والیاں میل اینڈ فیمیل, پھر والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں, والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں, والخاشعین والخاشیات اور اللہ سے ڈرنے والے یعنی خشوع رکھنے والے اور خشوع رکھنے والیاں, اور صدقہ کرنے والیاں اور صدقہ کرنے والے یعنی والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں, والصائمین والصائمات اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں, والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے, والحافظات اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے، والذاکرات اور ذکر کرنے والیاں، یہ سارے کام کرنے والوں کو خوشخبری کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، واجر عظیمہ اور اجر عظیم دیتا ہے، یعنی پھر جہنم سے بچا کر جنت میں بھی لے جاتا ہے۔ اگر آپ نے صرف لفظوں پہ غور کیا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ترجمہ یاد کرنے کے اعتبار سے یہ سب سے آسان آیت ہوگی، لیکن عمل کے اعتبار سے اور اپنے اوپر لگانے کے اعتبار سے یہ ہے ایک مطلوب معیار۔ جب بھی رمضان قریب آتا ہے بہت سارے لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں، رمضان میں کیا کرنا ہے، رمضان کیسے ہوگا، کیا ہوگا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے رمضان سے پہلے بھی تو ہم نے بہت کچھ سنا تھا، اور پچھلے رمضان میں بھی ہم نے بہت نیکی کے ارادے کیے تھے اور بہت سارے کام شروع بھی کر لیے تھے۔ پہلے تو میں اپنے آپ کو اس کا حساب دوں، کیا میں اور آپ منتظر ہیں اس بات کے کہ رمضان آئے تو کچھ کریں؟ میں اور آپ منتظر ہیں اس بات کے کہ رمضان آئے گا تو پھر عبادات میں خشوع اور خضوع؟ نہیں، اس کے لیے تیاریاں تو پہلے کرنی ہیں۔ دیکھیے، گھر میں مہمان آ جائے اس وقت تیاری تو نہیں ہوتی، اس وقت تو سرو کرنا ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو اتنی دیر پہلے بلانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اور میں ذرا سا اپنا کردار سنوار لیں، ہم ایک ایسے انسان کے روپ میں خود کو دیکھ لیں کہ جس میں مطلوبہ صفات بھی ہوں، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم اس کے تقاضے پورے کر سکیں، ورنہ ہیپ ہیزرڈ ہے، صرف افرا تفری ہے۔ رمضان کے ساتھ ہی بہت ساری تبدیلیاں ہماری زندگی میں آنے لگتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو بہت اپسٹ کرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، لیکن کام وقت سے پہلے کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ لکھ لیں کہ پہلے سے کی ہوئی تیاری کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو بہت ساری مشکلات آتی ہیں نا، جس کو ہم ایڈورس کنڈیشنز کہتے ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتے۔ جو انسان کام کو وقت سے پہلے کر لیتا ہے نا، وہ اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہ مشکل لگتی ہے۔ بس مہمانوں کا آنا بھی بعض لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، لیکن جس خاتون نے بہت سگھڑاپے سے گھر بار صاف کر کے کھانے بنا لیے، اس کو مہمانوں کے آنے کا بلکہ انتظار لگ جاتا ہے۔ تو یہی بات آپ سے کہوں گی کہ رمضان کا مہمان ہمارے گھروں میں آنے والا ہے، تو خدا کے لیے ہم سب اس کے آنے پہ کام شروع نہ کریں، ہم اس کے آنے سے پہلے اپنے کردار کو سنواریں۔ اب چلیے اس آیت پہ، میں نے ترجمے میں بھی تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آپ ذرا 1 2 3 کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صفات ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ دہرا لیتی ہوں اس سوچ سے کہ آج ہم نے اس آیت کو اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ لکھ کے لے کے جانا ہے۔ میں بولتی ہوں، آپ اپنے ساتھ گنتے جائیں۔ مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین اور ذاکرین۔ 10 بنی ہے میرے پاس، تو 10 ہے نا، یہ 10 صفات ہیں جو آپ کو مجھے اپنے اندر لانی ہے۔ اور یہاں ترتیب پہ میں توجہ دلانا چاہوں گی، روزہ کس نمبر پہ آیا ہے ذرا دیکھیے، نیچے سے دیکھیں تو 10 اور 9 اور 8ویں نمبر پہ۔ 7 خوبیوں کا تذکرہ اوپر ہے، پھر 8ویں درجے پہ صائمین ہے۔ یہ ترتیب آج ہمیں بھولی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس میں گائیڈ لائن دوں۔ سب سے پہلے بندہ مسلم ہوتا، لیکن مسلم کے ساتھ اگلا ہی لفظ لگا ہوا ہے مومن۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ظاہری ریچول کا نام۔ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لیونگ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دین تو ایک اسلامی ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کی کیفیت ہے۔ یہ دونوں میں ساری زندگی آنکھ میں چولی لگی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ہماری زبان میں مسلم ہوتے ہیں، فلاں آج مسلمان ہو گیا، اور کچھ پہلے مومن بنتے ہیں پھر مسلم ہوتے ہیں۔ ایک جملہ لکھ لیں، پہلے مومن بنے پھر مسلم بنے۔ آپ کسی ریورڈ کو ذہن میں لے آئے، आप अपने कुरान के सफर के थ्रू ईमान के दर्जों को अपना देख लीजिए। अपने बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं? मुस्लिम बनाना चाहते हैं ना, तो पहले उनको मोमिन बनाइए। मोमिन होना क्या है? दिल की कैफियत है। आमंतु बिल्लाही व बि रसूलिही, और सारी वो 6 चीजें जो हम अक्सर सुनते हैं ईमान मुफस्सिल में। सबसे पहले दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, अपना एहसास हो गया कि मैं कमजोर हूं, आखिरत का यकीन हो गया, बिलकदरी खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से है। जब वो ईमान की जुज़ियात पूरी हो जाती है ना, उसके बाद मुस्लिम बनना बहुत आसान है। मसलन आप कहते हैं कि हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ना क्या है? इस्लाम। दिन में 5 नमाजें एक खास गेटअप और एक खास माहौल के साथ पढ़ना क्या है? इस्लाम। अब आपके बच्चे इस्लाम कब कबूल करेंगे? जब वो ईमान कबूल कर चुके होंगे। पहले अपने बच्चों के दिलों को मोमिन बनाएं। पहले आप अपने साथियों को ईमान दें। आप अपने शौहरों को नमाजी बनाना चाहते हैं, आप अपनी बीवियों पे काम करना चाहते हैं। जिंदगी में कोई शख्स जिस फर्द के साथ इस्लाम का लफ्ज जोड़ता है, उससे पहले उसको ईमान सिखाना पड़ता है। तो दोनों बातों को साथ ले लीजिए। तो इस्लाम जाहिर की कैफियत है और ईमान अंदर की कैफियत है। इसमें भी लोग बहुत खेल करते हैं, फलां नमाज तो नहीं पढ़ता, हाँ रोजे भी मुश्किल है। हाँ, अंदर से बड़ा नेक है। आप लिख लें, जाहिर से नेक होना इस्लाम है, बातिन से नेक होना ईमान है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अंदर से तो बड़ा नेक है लेकिन बाहर से नेक ना हो। मसलन आप देखिए कि बच्चा आपको कहता है, मामा मुझे आज बुखार है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप उसका बाजू चेक करती हैं कि देखो ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो बाजू तो बिल्कुल ठंडी है, कोई भी गर्मी नहीं है, तब कहते झूठ बोलते हो, हाथ तो तुम्हारा इतना ठंडा है। तो उसके जवाब में वो कहता है, मामा नहीं मुझे अंदर बुखार है। तो फिर आप जितना मर्जी उससे प्यार करें, जितनी मर्जी भोली माँ हो, आप उसको जरूर ये बात कहेंगी कि अगर अंदर बुखार है तो वो बाहर क्यों नहीं दिखता। बात वाजे। तो फिर यही सवाल मैं आपसे दोहराती हूँ कि जब अंदर ईमान है तो बाहर क्यों नहीं दिखता? आज उम्मत मुस्लिमा में से अक्सरियत का यही हाल है, इल्ला माशाल्लाह। अंदर के ईमान की चुगली बाहर का इस्लाम खाता है। और कोई पूछे तो कहते हैं, तुम्हें क्या पता अंदर से फलां कितना नेक है और अंदर उसके क्या हो रहा है। पहली बात है कि मुझे तो आपको तो जरूरत ही नहीं किसी को नेक साबित करने की या बद करने की। ना हम किरामन कातबीन है कि जिन्होंने रिपोर्ट देनी है आगे, और ना हमने जाकर क्यामत के दिन किसी की को गवाहियां इस रंग में देनी है। हम कहते हैं सारे हमसे अच्छे हैं, सीधी सी बात है। बट अपने ऊपर लेकर सोचें। आज यहाँ इस अल्लाह के घर में बैठे हुए हम अपना जायजा लेते हैं, क्या वाकई मेरे अंदर ईमान है? देखिए, मैं इसी पे बात कर दूंगी ना तो अगली 10 सिफात पे बात नहीं कर सकूंगी, और मुझे हक है कि मैं इस पे बात करूं। आज आप अपनी जात को मुजरिम साबित करें, मत देखें इर्द गिर्द वालों को। वो कहते ना कि मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। उससे पहले क्या कर दिया? मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिदें बन जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 लोग जमा होते हैं एक मस्जिद बन जाती है, इज नॉट अ बिग डील। पर मस्जिद में नमाजी, नमाज पढ़ने के लिए आना, मस्जिदों की वो रूहानियत, मस्जिदों के अंदर से वो सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह का रंग दिखना, इसमें सारी उम्र लग जाती है। हम सारी जिंदगी अपने हालात का रोना रोते हैं। अक्सर ऐसा हो गया तो मैं ऐसी हो जाऊंगी, ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या मैंने दुनिया में कारनामा कर देना। और आप देखते हैं सब कुछ हो आके गुजर गुजार जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। और अक्सर एक जुमला बोलती हूँ खुद को सुनाने के लिए कि अगर आप मजबूर हैं, किसी ने आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं, आपके रास्ते की रुकावटें हैं, मसलन होती हैं, बीमारी है रुकावट है, घर वाले पसंद नहीं करते रुकावट है, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स है रुकावट है, शौहर का मसला है रुकावट है ना, हमारी सबकी रुकावटें हैं। कुछ लोगों की ये रुकावटें उनकी मुनाफ़कत को छुपा देती हैं, क्योंकि जिस दिन वो रुकावट दूर होती है ना, फिर भी नहीं मानते हैं। शुक्र करें कि वो मजबूर है, शुक्र करें कि वो बीमार है, शुक्र करें कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, शुक्र करें वो माली दबाव में, शुक्र करें कि बच्चों के गमों में अल्लाह ने डाला हुआ है, शुक्र करें वो कि अल्लाह ने शौहर के मसले में डाला हुआ है। हो सकता है छुप जाए, वरना अब्दुल्ला बिन उबई की तरह बेनकाब हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला इंसान के ऐब ढांपता है। बात तो कड़वी है, मुझे खुद लग रही है कड़वी है, लेकिन सच है। कभी अपने ऊपर लेकर सोचें कि ईमान मेरे दिल में आ गया, मैंने रमजान में क्या करना है? रोजे रखने। 8वें नंबर पे आए इस आयत में, अभी ये 7 मरहले तय करने हैं। तो लिखिए, रमजान के तकाजे पूरे करने के लिए सबसे पहले मोमिन बनना पड़ेगा, फिर मुस्लिम बनना पड़ेगा। इस्लाम और ईमान जब आपके मेरे दिल की मट्टी को नरम कर देगा ना, वो जैसे किसान गोडी करता है ना बीज डालने से पहले, फिर एक बीज डले या 100 डले, वहां से खेती तैयार हो ही जाती है। बिल्कुल इसी तरह और बिल्कुल इसी तरह मेरे दिल की मट्टी अगर जरखेज है, अंदर ईमान का बीज पड़ चुका है, तो फिर तीसरी सिफत आएगी मेरे अंदर, वल कानतीन वल कानतात, कनूत। कनूत को तो बस दो लफ्जों में समझ लें, आजजी और दबाव। लेकिन आजजी, बींग हम्बल, आजिज होना, अपने आप को हम्बल फील करना, और साथ ही साथ दवाम हमेशा। ये नहीं कि 15 शाबान आई तो खूब इबादत की, रात को सारी खड़े होके जाए नमाज पे, और हो सकता है कि 16 शाबान को फजर भी ना पड़ी, ईशा भी ना पड़ी। कनूत में ये दो चीजें लाजमी होंगी। नंबर एक, इबादत करने के बावजूद आपके अंदर आजजी होगी, अल्लाह के रास्ते के काम करने के बावजूद आपके अंदर आजजी होगी। हर नेकी करते हुए आप आजिज जरूर रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ दवाम, वो एक मौसमी नेकी नहीं होगी। यानी हमने सिर्फ रमजान की नेकियां नहीं पूरी करनी। क्या मैंने आपने सिर्फ रमजान के तकाजे पूरे करने हैं? नहीं, इससे पहले हमें इस्लाम के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें ईमान के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे, फिर इसके बाद हमें उम्मते वसत बनने के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे, फिर इसको और एलेबोरेट करते जाएं तो नबी सल्लम का उम्मती होने का तकाजा पूरा करना पड़ेगा। बिलीव में सारी जिंदगी तकाजे पूरे करने में गुजर जाती है। डिमांड है ना, तकाजा शायद कुछ लोगों को हार्ड लग रहा हो, डिमांड। हमें हर डिमांड को पहले फुलफिल करना है। आप मैं दुनिया के जिस दौर से आज के जिंदगी में गुजर रहे हैं, आप इर्द गिर्द को नजर में रख के देख लीजिए, कितने लोग हैं जो ईमान, इस्लाम और उम्मत वसत होने के तकाजे पूरे करते दिखते हैं। अपने गमों में सोते हैं, अपने गमों में उठते हैं, अपनी खुशियों में हंसते हैं और अपनी खुशियों में दूसरों को हंसाते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जिनके दिल में दीन का दर्द है। जब दीन का दर्द नहीं होता ना, तो अल्लाह अपने दर्द लगा देता है। फिर अल्लाह कहता है, अब दर्द तो मिलना ही था, तो करो फिर खाने पीने के दर्द, औलादों के दर्द, फिर बीमारियों के दर्द। मैं नहीं कहती कि फतवा दे रही हूँ कि जितने बीमार हैं वो इस सजा में बीमार है। मैं नहीं कहती जितनों के बच्चों के गम है वो इसका मिजाल है। बस अपने ऊपर ले लीजिए कि मेरे हर दर्द की दवा क्या है, कि मैं दीन का दर्द लगा लूँ, मैं अपने दुनिया में आने के मकसद को समझूँ। तो तीसरी चीज़ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो खाने तीन अवल खाने ताता, आजिजी और दवाम। दवाम क्या है? एवरलास्टिसिटी, हमेशा करना, 24 घंटे का मुसलमान। आप देखिए कि सहाबा कराम और हम दोनों को अगर तकाबुल में रखें ना, तो फर्क बहुत सारे हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि वो 24/7 के मुस्लिम थे, हम सीजनल मुस्लिम हैं। रमजान आता है तो हम जाए नमाजों की मट्टी झाड़ते हैं, कुरान के सफ़ों को सीधा करते हैं, फिर हम इफ्तारियों सहरियों के लिए खजूरें मंगाते हैं, फिर हम मस्जिदों में जाकर चंदे देते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं क्योंकि रमजान। और ईद की नमाज भी शायद पढ़ लें तो पढ़ लें, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। फिर हम इंतजार करते हैं इस बात का कि अगला रमजान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दुनिया से जाने का वक्त आया, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मोहब्बत की वजह से मान नहीं रहते, दिल नहीं मानता ना। कई ऐसे रिश्ते होते हैं ना जिंदगी में, छूट भी जाए आप कहते नहीं इधर ही है। कई बातों को इंसान का जहन कबूल ही नहीं करता। हजरत उमर का जहन कबूल नहीं कर रहा, लेकिन उमर पे अगर जज्बात गालिब थे ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर बड़ाई और तहम्मुल और हिल्म गालिब था। जज्बात पे काबू पाकर उमर को समझाने के लिए खड़े हुए और मिंबर पे जाके सारी उम्मत को मैसेज दे गए कि मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमुत, जो अल्लाह की इबादत करता था तो वो फिक्र ना करे, अल्लाह तो आज भी जिंदा है और वो नहीं मरेगा, और वो मर ही नहीं सकता, उसके लिए ये लफ्ज़ कहना ही ना जेबा लगता है। वो तो अल हय है, वो तो अल कय्यूम है, वो तो थामने वाला है, वो तो अल मुहयी और अल मुमीत है, वो तो जिंदगियां देता है, वो तो लोगों को मौत देता है, वो तो सुबहानहू पाक है इन सारी बातों से। हाँ, लेकिन मन का न याबुदु मुहम्मदन, ये है असल जुमला। आप देखिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये जुमला कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो कान खोल के सुन ले कि वो तो अब दुनिया से चले गए। इस एक जुमले पे मैंने एक इंग्लिश स्पीकर है उनका एक दर्स सुना था, उन्होंने कहा था कि मन का न याबुदु रमदान फ़इन्न रमदान कदमात फ़कदमात, कि जो रमज़ान की इबादत करता था या रमज़ान में इबादत करता था वो तो चला गया और ख़त्म। तो मुझे आपको क्या करना है, क़ानितीन बनना है। चलिए इस पे आप और मैं अपना छोटा सा मुहासबा करते हैं। पिछले साल रमज़ान में हमने कितने इरादे किए, और एक नया कुरान चलता है सफ़र में आता है तो कई नियतें होती हैं। आप कभी अपनी पुरानी डायरी खोलें, और अगर अगले पिछले सालों में कभी नहीं लिखते थे ना अपनी बातें रिमाइंडर्स, तो इस साल लिखिए, आज से बना लें, कल ले आए बाजार से डायरी, रोज हर बात जो आपके इर्द गिर्द होती ना उससे कुछ सबक लें और लिखें, और फिर उसके बाद उसको गाहे बगाहे चेक करते रहें कि मैंने कितनी बातों को अभी तक अपने अमल में रखा हुआ है और कितनी छोड़ दी है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने वेइंग मशीन रखी होती है अपने बाथरूम में, गाहे बगाहे आप अपना वजन चेक करते हैं कि जी आप गेन कर रहे हैं या कैसा है, राइट? वजह क्या है कि आपकी नजर जब वजन पे होगी तो खानों का मजा कम हो जाएगा, इज इट ट्रू? जब आप कोई गुलाब जामुन मुंह में डालेंगे तो आपको फौरन वो सुई भरती हुई दिखेगी, आप कहते हैं छोड़ो, बस इसको लिख लें। जिस तरह खाने की लज्जत कम हो जाती है ना वजन के बढ़ने पे, इसी तरह गुनाह की लज्जत कम हो जाती है जहन्नुम का वजन भरने पे। फिर उसके बाद आप देखिए वल काने तीन अवल काने तात में दोनों बातें हैं, जो अधूरी नेकियां हैं उनको जाके दोबारा पकड़ लें। बीच रस्ते के राही कभी मंजिलों पे नहीं पहुंचते। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आज हम मुसलमानों का मसला जो है ना, ये बीच में चीज़ों को छोड़ देना होता है, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं होते। खुद पूछें, जो काम शुरू किया कल तक या जब से किया पूरे कितने किए? अधूरी ख्वाहिशों का तो एक मकबरा होता है इंसान की जिंदगी में, उसकी कब्र से बड़ी कब्र तो उसकी ख्वाहिशों की बनेगी उसके मरने के बाद। कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो अपनी अधूरी चीजों को जाके आज से खोलिए, आप देखेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, इत्मीनान मिलेगा आपको। चले आगे चलते हैं। बस सादिकीन बस सादिकात, अगली सिफत सच्चों में से बन जाए, खुद भी सच्चे और आगे सच मुतसद्दिकात में यहां तक भी आता है कि तस्दीक करने वाले। सच्चा बंदा कौन होता है? प्योर। आज के दौर में मैं सच्चे लफ्ज को अगर आज के फेमस वर्ड से बोल दूं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है भला? प्योर, ना उसमें कुछ डाला गया और ना निकाला गया और ना उसको मशीनों से गुजारा गया, बस एज इट इज। भैंस के थनों से जो दूध आया वो हमने आप तक पहुंचा दिया, राइट? ऑर्गेनिक है ना सब्जी खाना पीना, आप खुद स्टोर्स में जानते हैं, ऑर्गेनिक स्टोर में जो चीज़ें होती हैं वो 30-40% महंगी होती हैं, लोग ले लेते हैं। मैं सोचती हूँ हमारे देहातों में रहने वाले और पाकिस्तान वाले तो खाते ही ऑर्गेनिक है। हम लाख बुरा समझे अपने मुल्कों को, वहाँ वाले हमसे ज़्यादा हेल्दी खाना खाते हैं। ना खाएं आप बाहर का गंद भला, आप फ्रेश सब्जी उगती है उसको खाएं, देखें फर्क पड़ता है। अब आप सोचिए कि सादिक शख्स या सादिका हम अपने ऊपर लेते हैं तो सादिका कैसे बने, ऑर्गेनिक बन जाए, वो कैसे होता भाई? सबसे सच्चा इंसान पता कौन है दुनिया में? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देता है, क्योंकि ये इंसान की तबीयत के अंदर बुंदा हुआ सच है। ये फितरत के अंदर पिरोया हुआ सच है कि दुनिया में जाओगे तो एक रब को मानोगे, अलस्तु भी रब्बी को, ये सच है। फिर इसके बाद आप देखिए कि सच्चाई अल्लाह के साथ क्या है कि उसके दिए हुए अहकाम को माना जाए, उसकी आयद करदा पाबंदियों को निभाया जाए। मैं सिर्फ एक लफ्ज सादिक और सादिका के अंदर पूरी शरीयत को फिट करके आपके सामने रख दूं तो फिर भी इसका हक अदा नहीं होगा। मामलात में सच्चे हैं हम, खुद से पूछें, अपने इर्द गिर्द वालों से पूछें। जाइए जरा आज घर में जाके जरा पूछें तो सही अपने घर वालों से, मैं सच्ची हूँ। सच्चा क्या होता है भला आपको पता? जिसको आप इंग्लिश में आज के दौर में कहें फेयर या मुखलस को सिंसियर कहते हैं। आप अपने शौहर से पूछें क्या ख्याल है मैं सच्ची बीवी हूँ, गवाही ले आए अपने शौहर की अपने हक में। 10, 12, 15, 20, 25 साल जब से आप उनके साथ हैं उनसे पूछिए कि क्या आपको लगता है कि मैं आपकी मुखलिस बीवी हूँ। मुखलिस कह लीजिए सच्चे को। हर रिश्ते को किसी तराजू में रख के कटहरे में खड़े हो जाएं, आओ मुझ पे कमेंट्स दो। जाइए अपनी सास से पूछिए क्या मैं एक सच्ची बहू हूँ, अपनी बहनों से पूछिए सच्ची बहन हूँ, भाइयों से पूछिए। ये रिश्तों की डोरियाँ आप मेरे से बहुत अच्छी जानते हैं। सच्चा कौन होता है जो हर रिश्ते को निभाता है? उसकी जिंदगी में अफरात और तफरीत नहीं होती, झुकाव नहीं होता, कल मुअल्ला का नहीं होता। अल्लाह के नबी इतना डरा करते थे कि अल्लाह मैं अपनी बीवियों के बीच में इंसाफ करता हूँ अपनी कोशिश से, लेकिन मेरा दिल आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ झुकता है, तो मुझे इस पे ना पकड़ना। बात समझ रहे? अब अल्लाह का नबी है जिसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, वो अपने आप को अदालत में खड़ा करके कहता है लोगों मैंने जिसको कुछ कहा हो तो आओ बदला ले लो, कल क्यामत के दिन आके बदला ना लेना। एक सहाबी खड़े हो के, जी अल्लाह के नबी मैंने लेना है। क्यों? कहा वो आप उस दिन जंग में सफ़े दुरुस्त कर रहे थे ना, तो आपकी इस छड़ी की नोक मेरे पेट में चली गई थी, खुप गई थी। कहाँ? कहा वो सफ़े सीधी करा रहे थे तो ऐसे हो गया। कहा अच्छा लाओ फिर अभी बदला ले लो। दूसरे सहाबा को गुस्सा आ रहा है कि ये क्या गुस्ताखी है। लेकिन उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मुझे हक दिया, मैं लूंगा। कहा लो भाई तुम भी अपनी छड़ी से मेरे पेट पे थोड़ा सा बोझ डाल दो। कहा नहीं, जब मेरे पेट पे छड़ी लगी थी तो मेरे पेट पे कपड़ा नहीं था। अब भी उतारे, अब ये तो और भी ज्यादा बात तो बुरी है। लेकिन अल्लाह का नबी जिसको ये यकीन था कि मैंने सादिकीन में उठना है क्यामत के दिन, कल क्यामत के दिन अगर ये मेरा उजर लेके आ गया तो क्या बनेगा। खैर उतार दिया कपड़ा, और जो ही कपड़ा उतरा उस शख्स ने आके आपके पेट का बोसा ले लिया, किस कर लिया। कहा मेरी कहाँ जुरत आपसे बदले लूं, मैं तो ये चाहता था कि मेरे होंठ आपके जिस्म अथर को चूम लें ताकि जहन्नम की आग से आजाद हो जाए। इतना भी कोई सच्चा शख्स दुनिया में हो सकता? और अल्लाह के नबी की सच्चाई तो मुझे नजर आती है जब आप हुज्जतुल विदा के मौके पे खड़े होके लोगों से पूछते हैं कि लोगों क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया, हल बल लगता। ये सच्चाई है ना, यानी जिस काम पे मुझे अल्लाह ने अपॉइंट किया था क्या मैंने कर दिया। देखिए आप के घर में पोस्टमैन आता है ना, फिर आपसे कहते हैं नहीं इधर साइन करके दो डिलीवरी नोटिस कि तुमने ये पैकेज रिसीव कर लिया, क्योंकि ये जाके मैं अपनी जॉब वालों को दिखाऊंगा कि इट्स डिलीवर्ड नाउ। आजकल तो उसके कितने आसान मरहले है ना, लेकिन वो क्यों पूछता है जिसको मिलता है पैकेज कि मैं गवाही दे सकूं। अल्लाह के नबी को खुद भी पता था कि आपने इतने साल एक पैगाम को देने में लगा दिए, लेकिन लोगों से पूछना चाहते थे बताओ मैंने अमानत का हक अदा किया। तो साहबा ने क्या कहा था? यस बल्लगता, पहुंचा दिया, इबलाग कर दिया, बल्लगता व अदैता। ना सिर्फ ये कि आपने पैगाम पहुंचा दिया बल्कि आपने हक भी अदा कर दिया। ये है सच्चापन। हम सब अपने आप से पूछें अपनी कमिटमेंट्स को किस दर्जे पे जाके निभाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। हर बंदा अपने अंदर एक अदालत रखता है, हमें अपनी मजबूरियों की इंटेंसिटी भी पता होती है और हमें अपनी अल्लाह की तरफ से जो मिली हुई नेमतें उसका भी पता होता है। सारी दुनिया को मैं मुतमईन कर सकती हूँ खूबसूरत लफ्ज बोल के, खुद को नहीं कर सकती। तो अल्लाह हमें सच्चा बनाए। फिर आप देखिए एक आखिरी एंगल सच्चे का, फिर आगे चलते हैं। सच्चाई अभी तक क्या की? कॉल और फेल का सच्चा। दुनिया में किसी मामले में आपने हक का साथ दिए बगैर नहीं रहना। हम कहते हैं ना इस्लाम हक है, कुरान हक है, हक बात कहो, खिलाफ बात ना करो। कुरान पाक ने एक खूबसूरत हक कहा है और वो क्या है कि अदल से काम लो, चाहे उसकी जद तुम्हारे अपने माँ बाप पे क्यों ना पड़े, तुम्हारे अपने नफ्सों पे क्यों ना पड़े। तो सच्चा बंदा वो भी होता है कि वो झूठे को झूठा और सच्चे को सच्चा कहता है। बात समझ गए? जिसकी गलती वो मुजरिम, जिस पे गलती का इल्जाम वो मुलजिम था, मुजरिम नहीं था। हम बहुत जगह आके इससे अपने आप को दूर करते हैं। दोस्त का भी बच्चा है, आपका भी बच्चा, आपका बच्चा कसूर कर सकता है, बट आप कहते नहीं सारा कसूर उसके दोस्त का है। तो बहरहाल ये सच्चाई की लिस्ट बड़ी लंबी है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसमें पक्का कर दे। अल्लाह से सच्चे हो जाएं, रिश्तों में सच्चे हो जाएं, अल्लाह की दी हुई नेमतों से सच्चे हो जाएं, अल्लाह ने जो आपको दीन की दौलत दी उससे सच्चे हो जाएं। जिस हद तक कर सकेंगे देखिएगा अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी कमियों बेशियों से दरगुजर करेगा। शर्त यह कि अंदर से खोटे ना हो। खोटा बंदा बहुत है। आप जहाँ सादिक है ना, ऑपोजिट देखें आ जाके सूरह तौबा में मुनाफिकों की सिफात है, उसमें हो सकता है आपको झूठ की बातें मिल जाएं। ये झूठ होता है, कटोर पाने दिल में कुछ और ऊपर कुछ। सच्चा बंदा जो दिल में होता है वो जुबान पे लाता है, आई लव यू तो आई लव यू, और अगर लव नहीं है तो कोई जरूरत थोड़ी है कहने की। तो इंसान हमेशा अपने जज्बात में भी सच बोले।